नेंद्रा, सभी को पंडित जी आ गए हैं। हेलो, कॉन्फ्रेंस में सब लोग हैं
जी
ना?
है सब्जेक्ट सब्जेक्ट सोचे आज
हाँ। एक
सब्जेक्ट समय सर जी शास्त्र जी के रखना, क्योंकि हम लोग पुण्य अधिकार के ऊपर सारांश लेने वाले हैं।
अच्छा, आज
गाथा
10 लक्षण। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ पंडित जी का, कि आज 10 लक्षण पर्व के अवसर पर हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में आदरणीय पंडित डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश पधारे हैं। मोना कॉन्फ्रेंस में पंडित जी आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय पंडित जी जाने माने अध्यात्म के विद्वानों में से एक है। पंडित जी बहुत ही अच्छे वक्ता है। पंडित जी, आपने आचार्य श्री अमृतचंद्र सूरी के ग्रंथ टीका पर व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर PhD प्राप्त की है। आपने कई बुक का एडिटिंग भी किया है, उसमें योग सार, तत्वार सूत्र इत्यादि है, और आपने लघु तत्व स्फोट पे कमेंट्री लिखी है, और इसके अलावा आपने शासन देव जिनशासन, समय सार क्यों एवं किसे पढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तर माला भाग 1-5, अन्य आपने कई बुक्स लिखी है। पंडित जी से पहले भी तो हमें मोना में स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हुआ है। आज से आदरणीय पंडित जी समय सार ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार की गाथा पर स्वाध्याय कराएंगे, और मुमुक्षु को एक विनंती है कि आप स्वाध्याय के समय आपके साथ साथ शास्त्र अवश्य रखें, ऐसा पंडित जी का भी आग्रह है, ताकि हम स्वाध्याय का बराबर लाभ ले सके। पंडित जी हमें गाथा के शब्दों का एक एक अर्थ करते जाएंगे, और आज का स्वाध्याय का 55 मिनट्स रहेंगे, और बाद में 5 मिनट क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। थैंक यू पंडित जी, आप शुरू कर सकते हो।
हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, ये समय सार जी का पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं।
अच्छा
वंदे तु सब सिद्धे दुवमचल मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुरो मृणमौषध केवलि भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। ये समय सार जी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचारी देव द्वारा विरचित। इसका जो तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार, उसको अपन प्रारंभ कर रहे हैं और उसके विषय में चर्चा और खुलासा करना चाहेंगे। प्रारंभ में अमृत चंद्राचार्य की टीका जब प्रारंभ हुई इस पुण्य पाप अधिकार की, तो उन्होंने अमृत चंद्राचार्य ने स्पष्ट लिखा, अथ एकमेव कर्म द्विपात्री भूय पुण्य पाप रूपेण प्रवशति। इसका अर्थ ये है कि इसके बाद जो एक कर्म जो दो पात्र के रूप में प्रकट हुआ है, पुण्य के रूप में और पाप के रूप में, वो कर्म दो नहीं है, वो एक ही है। उस एक ने ही दो भेष बनाए हैं, पुण्य पाप के रूप में प्रवेश किया है। उसके विषय में थोड़ा सा मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण संस्कृत में है और संस्कृत का एक छंद है। तदर्थ कर्म शुभा शुभ भेद तो दुतय ताम गतमेक्य उपानयन विलपित निर्भर मोह रजायम स्वयमुदेत्यवबोध सुधाप्लव। इसका अर्थ ये है कि तदथ कर्म शुभाशुभ भेद तो, अब इसके बाद कहते हैं कि जो शुभ अशुभ रूप जो दो कर्म हैं, वे वास्तव में नाम भेद करके उनमें दो प्रकार का द्वैत खड़ा हुआ है। माने वे शुभ भाव को कोई अज्ञानी जीव अलग मानता है, अशुभ भाव को अलग मानता है, जबकि वे दो नहीं हैं। इसलिए ज्ञान जब भी उदित होता है तो उन दो को कर्म रूप मानता है, किसी एक को अच्छा और किसी एक को बुरा ऐसा नहीं मानता है। दुतय ताम वो भले दो नजर आते हैं, गतमयिक उपानयन, परंतु वो सम्यक ज्ञान उन दोनों को एक रूप दर्शाता है। एक रूप दर्शाता है का मतलब दोनों कर्म रूप हैं, दोनों आश्रव भाव रूप हैं, दोनों बंध भाव रूप हैं, इनकी ये एक जाति हुई, इसलिए भले वे अलग अलग बन करके अपना रूप धारण करके आए हों, लेकिन उनको ज्ञानी जान लेता है कि ये दो नहीं है, दोनों की जाति एक है। इसलिए जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह मंगलाचरण में ज्ञान को याद किया है। वैसे पूरे समय सार में जितने भी मंगलाचरण हुए हैं उन सब में ज्ञान को ही याद किया गया है, क्योंकि पूरे समय सार का प्रयोजन सारांश अगर कुछ है तो ज्ञान की उपासना करना है, जिससे संपूर्ण प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आत्मानुभूति भी उसी से प्रकट होती है। हाँ, तो इस तरह से आत्मानुभूति उसकी प्रकट होती है। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ अशुभ के भेद से द्वित्व को प्राप्त, माने दो पने को प्राप्त, उस कर्म को एक रूप करता हुआ जिसने मोह रज को दूर कर दिया है, अर्थात जिसने आश्रव को नाश किया है, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञान सुधांशु माने ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं ही उदित होता है। जैसे ही सम्यक ज्ञान उदित होता है वैसे ही ये कर्ता कर्म का भेद मिट जाता है और उसकी दृष्टि में दोनों कर्म नजर आने लगते हैं, उसकी दृष्टि में दोनों आश्रव नजर आने लगते हैं, दोनों में कोई भेद नजर नहीं आता है। ये दृष्टि का कार्य है, भले आचरण में कंचित भेद हो सकता है और वो ऐसा हो सकता है कि पहले जीव आचरण अपना पाप से हटाता है, फिर बाद में पुण्य से भी हटाकर शुद्ध में जाता है। ये आचरण में तो इतना अंतर देखा जाता है, लेकिन मान्यता में कभी अंतर नहीं होता। मान्यता में दोनों आश्रव हैं, दोनों बंध हैं, दोनों हेय हैं, कोई भी उपादेय नहीं है, आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, ऐसा तो उसका श्रद्धान सम्यक ज्ञान उदित होने पर होता है। अब आगे आचार्य इसका जो परिचय कराएंगे उसमें हमें दो बातें पहले जान लेनी है कि जो जीव अजीव अधिकार में आत्मा का स्वरूप बताया था छठवीं गाथा में, उसमें ये बात बहुत क्लियर कर दी थी कि यद्यपि पर्याय में पुण्य पाप दोनों प्रकार के परिणाम पैदा होते हैं, जो शुभाशुभ भाव परिणाम होते हैं जिनसे पुण्य पाप की रचना होती है, वे शुभाशुभ भाव रूप भगवान आत्मा कभी परिणमता नहीं है। इसका अर्थ ये निकला कि पुण्य पाप रूप भाव वे आत्मा से भिन्न हैं, ये आत्म स्वरूप नहीं है, आत्मा इन रूप कभी हुआ नहीं और ये कभी आत्मा रूप हुए नहीं। ये पहली बात तो ये पहले अधिकार में जीव अजीव अधिकार में पता लगी, और दूसरा अधिकार था कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें ये बात खुलासा हुई है कि भले जीव के पर्याय में पुण्य पाप पैदा होते हों, लेकिन ज्ञान आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो उन पुण्य पाप का कर्ता उपभोक्ता नहीं है, वो तो उनका ज्ञाता मात्र है। ये दूसरे कर्ता कर्म अधिकार में भी पुण्य पाप भाव का कर्ता नहीं बताया है, बल्कि ये स्पष्ट लिखा है कि जो जीव आत्मा और आश्रव के भेदों को जानता है, इनके भेद पैदा करके जानता है, वो वास्तव में ज्ञानी होता है और उसका आश्रव रुक जाता है, बंध रुक जाता है और संवर निद्रा उसके प्रकट होती है। इस तरह से दो बातें तो ये ख्याल में आई कि जीव ज्ञायक है, वह पुण्य पाप रूप नहीं है। दूसरे अधिकार से ये ख्याल में आया कि जीव ज्ञाता दृष्टा है, अतः वह पुण्य पाप का कर्ता नहीं। और इस पुण्य पाप अधिकार में ये बात ख्याल में आना चाहिए कि पुण्य पाप दोनों एक ही जाति के हैं, आश्रव भाव हैं, बुरे हैं, हे हैं, उपादेय नहीं। इस तरह से अब ये जो विषय आगे बढ़ता है वो इस तरीके से है, उसमें देखेंगे आप, दोहा लिखा है हिंदी का पंडित जयचंद जी साहब ने, शुद्ध दोहा पढ़ते हैं। पुण्य पाप दो कर्म बंध रूप दुर्मान, शुद्धात्मा जिन लहो नमो चरण हित जानी। ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप दो कर्म, दोनों पुण्य पाप जो भाव कर्म भाव है, बंध रूप दोनों बंध रूप हैं, और दुर्मानी माने दोनों को बुरा मानना चाहिए, माने दोनों में कोई भी आत्मभाव नहीं है, ना हितकारी है, दोनों विभाव भाव हैं, इसलिए वे आकुलता के कारण हैं और बुरे हैं। इसलिए जिन्होंने शुद्धात्मा का को प्रकट किया है जिन्होंने शुद्धात्मा का अनुभव किया है मैं उन्हीं को हितकारी जानकर नमस्कार करता हूँ। ऐसा उस ज्ञान स्वभावी जो कोई भी पंच परमेष्ठी हैं उन सबके प्रति नमस्कार भाव आया और मुख्य पने ज्ञान को नमस्कार किया, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा भाव है जो अपने से जो विपरीत भाव विकारी भाव हैं उनको अपने से दूर करके रहता है, जानने के बाद भी उनको अपने में नहीं मिलाता, जानने के बाद भी उनके पास नहीं जाता, जानने के बाद भी वे उसमें नहीं आते, पर वो पुण्य पाप को पुण्य पाप रूप जानता हुआ भी ज्ञान रूप ही रहता है, कभी भी पुण्य पाप रूप नहीं होता है। ये बात इसमें आई है और श्लोक का अर्थ भी अपन ने पढ़ा है। अब अपन आगे एक श्लोक और आ रहा है जो है 101 नंबर का कलश है, उसको पढ़ते हैं और फिर आगे आएगा इस अधिकार का पहला कहना चाहिए गाथा सूत्र आएगा जिसके आधार से वो ग्रंथ प्रारंभ होता है। पर ये अभी मंगलाचरण के रूप में दो गाथाएं आई हैं, दो कलश आए हैं, उसमें एक कलश तो अपन ने अभी पढ़ा कि वो ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं उदित होता है और मोह रूपी रज को दूर करता है और मोह रज को दूर करता हुआ पुण्य पाप के द्वैत को मिटा देता है और उनमें एकत्व स्थापित करके श्रद्धा को निर्मल बनाता है। अब दूसरा आ रहा है उनके निजी स्वरूप बताने को कि ये दोनों पुण्य पाप हैं कैसे, उनका स्वरूप क्या है। ये मंद्राकांता छंद है, उसमें हम इसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ आपके सामने रखते हैं। एको दूरा त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् दन्याद् शूद्रा स्वयमयमिति स्नाति नित्यं तयैव द्वावप्येतौ युगपत उदरान्निर्गतौ शूद्रकाया शूद्रौ साक्षादपि चर्तो जाति भेद भ्रमेण। देखो एको दूरात त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमाना, क्या कह रहे हैं कि किसी चांडाली के शूद्रव मन शूद्रा के उदर से दो पुत्रों ने जन्म लिया, एक साथ दो युगल पैदा हुए, उनमें एक का नाम पुण्य है और उनमें एक का नाम पाप है। तो जैसे चांडाल के दो पुत्र उत्पन्न हुए उसमें चांडाल ने एक तो ब्राह्मण के दे दिया गया वो चांडाल का एक पुत्र और एक ब्राह्मण उसी के घर में रहा, शूद्रा के घर में रहा, चांडाली के घर में रहा। तो जिसको ब्राह्मण के यहाँ दिया गया उसको ये एकत्व बुद्धि हो गई कि मैं ब्राह्मण हूँ, और जो जो शूद्रा के घर में रहा उसको ये बुद्धि एकत्व रही कि मैं तो चंडाल हूँ, ब्राह्मण हूँ। इस अभिमान में ब्राह्मणत्वाभिमानात, ब्राह्मणत्व के अभिमान में वो तो मदिरा को एको दूरा त्यजति, उस एक ने तो मदिरा को दूर से ही छोड़ दिया क्योंकि उसको ये अभिमान हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि वो जन्म से देखा जाए तो ब्राह्मण है ही नहीं, उसे तो शूद्रा ने जन्म दिया है, चंडाली ने जन्म दिया है, इसलिए वो तो वाकई में शूद्रा है, शूद्र जाति का है, लेकिन उसको ब्राह्मणत्व पने का अभिमान हो गया और ये मानने लगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं मदिरा को नहीं सेवन कर सकता, इसलिए दूर से ही उसने मदिरा को त्याग दिया। और अन्य शूद्रा जो दूसरा ये मानता था कि मैं तो शूद्रा के घर में हूँ, शूद्रा से जन्मा हूँ, मैं तो शूद्र ही हूँ, तो वो क्या करता है स्वयं अहम इति, मैं तो स्वयं शूद्र हूँ ऐसा मानकर स्नाति नित्यम तयेव, हमेशा वो शराब में स्नान करता है, शराब में स्नान करता है का मतलब शराब को निरंतर सेवन करता है, वो शराब को छोड़ देता है ब्राह्मण पने के अभिमान में, इस शराब को निरंतर सेवन करता है। द्वावप्येतो युगपत निर्गतात्, द्वावत दोनों ही ये जो हैं, कौन दोनों, ये जो ब्राह्मण अपने को मानता है और जो अपने को शूद्र मानता है, ये दोनों युगपत उदरात निर्गत एक साथ दोनों जन्मे हैं, निर्गत माने जन्मे हैं, किससे जन्मे हैं, शूद्रिकाया माने उस चांडालनी से दोनों जन्मे हैं और दोनों शूद्र, इसलिए साक्षात देखो तो दोनों जन्म से शूद्र ही हैं, लेकिन उनको जाति भेद का भ्रम हो गया है, इसलिए भ्रम हो गया कि वे पले जो हैं वो अलग अलग जगह पर पले हैं, एक शूद्रा के घर में पला है तो उसको जाति का भेद यही रहा कि मैं तो शूद्र हूँ, एक ब्राह्मण के घर में पला है उसको ये भ्रम हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, भेद है, और इस भ्रम के कारण एक मदिरा का सेवन करता है और एक मदिरा का सेवन नहीं करता है। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये उनका भ्रम है, अलग है, लेकिन चाहे वे ब्राह्मण का आचरण करें चाहे वो शूद्र का आचरण करें, मूलतः तो वे शूद्रा के उदर से जन्मे हैं, इसलिए दोनों शूद्र हैं। ऐसे ही पुण्य पाप जो हैं, ये वाकई में एक कर्म के कर्म से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों कर्म रूप हैं, चाहे वो शुभ कर्म रूप हो और चाहे वो अशुभ कर्म रूप हो। दोनों कर्म रूप होने से जो उनमें भेद मानते हैं वे अज्ञानी, उनमें भेद नहीं है, दोनों की जाति एक है और वो कर्म की जाति के हैं और दोनों आश्रव भाव हैं, दोनों बंध भाव हैं, दोनों संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, दोनों आत्मा का भला नहीं करने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए दोनों कर्म उपादेय नहीं है। इसी दो गाथाओं के आधार से पंडित बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार में इस पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत एक पद्य लिखा है, बहुत ही सुंदर पद्य लिखा है। वे ऐसा लिखते हैं, जैसे काहू चंडाली युगल पुत्र जने तिन, जैसे किसी चंडालिनी ने दो और दो पुत्रों को जन्म दिया, तिन एक दियो बामन को एक घर राखो, एक तो ब्राह्मण को दे दिया एक उसने अपने घर में रख लिया। बामन कहायो तिन मध्यमास त्याग कियो, जो ब्राह्मण कहाया वो तो उसने मध्यमास का त्याग किया। चंडाल कहायो तिन मध्यमास चाख्यो है, और जो चांडाल कहाया कहलाया उसने मध्यमास का सेवन किया। इसी प्रकार से तेसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, दोनों चाहे पुण्य हो वो भी वेदनी कर्म का पुत्र है साता वेदनी का, पाप हो वो असाता वेदनी कर्म का पुत्र है, पर है वेदनी कर्म के दोनों पुत्र, कोई अन्य के नहीं है, इसलिए दोनों एक जाति के हुए कर्म की जाति के। तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न भाख्यो, उनमें भेद अगर दिखता है कुछ तो नाम का भेद है लेकिन जाति का भेद नहीं है, दोनों के एकत्व का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुह माही दौर धूप, यानी दुह माने दोनों ही कर्म, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो, दोनों आवागमन कराने वाले हैं। दौड़ धूप माने चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाले, दुह कर्म बंध रूप, और दोनों कर्मों का काम एक ही है, बंध कराने का काम है, छोड़ाने का, निर्जरा कराने का, किसी भी न पुण्य भाव का कार्य है और न ही पाप भाव का कार्य है, इसलिए दुह कर्म बंध रूप। याते ज्ञानवंत ना ही काहू अभिलाख्यो है, इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं वे किसी की भी अभिलाषा नहीं करते, ना पुण्य की अभिलाषा करते ना पाप की अभिलाषा करते, वे तो अपने शुद्धात्मा की अभिलाषा करते हैं और शुद्धात्मा को प्रकट करने का उद्यम करते हैं और पुण्य पाप दोनों को दूर करने का उद्यम करते हैं। और ज्यो ज्यो पुण्य और पाप जितना जितने अंश में अलग होता है उतने उतने अंश में उसके आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होती है, शुद्धोपयोग प्रकट होता चला जाता है, और आगे एक समय आता है कि समस्त मोह कर्म का क्षय हो जाने से ये शुभाशुभ भाव भी क्षय को प्राप्त होते हैं और आत्मा क्षीण मोही बनकर अल्प समय में या अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञानी बन जाता है, और फिर बाद में अपनी आयु प्रमाण उस 13वें गुणस्थान में रहकर 14वें गुणस्थान में अयोगी बनके और सिद्धत्व को प्राप्त करता है। इस तरह से ये दोनों के विषय में संक्षेप में पूर्व कहना चाहिए मंगलाचरण के रूप में बात हुई। अब कुंद कुंद आचार्य इस पुण्य पाप अधिकार की गाथा प्रारंभ करते, गाथा 145 नंबर से शुरू हो रही है। गाथा इस प्रकार है, कमम सोहिम कुशीलम सोहिकम चाविजान सुशीलम कहतम हो दि सुशीलम जम संसारम पवेशे दी। इसका अनुवाद है, कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को, किस रीति हो ये सुशील जो संसार में दाखिल करे। यहाँ ये लिखा मूल गाथा में, कम मम असोहम कुशीलम, शिष्य का ये प्रश्न है कि हम कर्म जो अशुभ कर्म है उसको कुशील माने, और सोय कम्मम चावी जाने सुशीलम, और जो शुभ कर्म है उसको हम सुशील जाने। ये पहली लाइन में शिष्य का प्रश्न है कि हे आचार्य देव, क्या मैं अशुभ कर्म को कुशील मानूं और शुभ कर्म को सुशील मानूं, तो इसमें क्या नुकसान है? तो नीचे की पंक्ति में अमृत कुंद कुंदाचार्य का जवाब, कहतम होदि सुशीलम, वो सुशील कैसे होता है, हो सकता है जो जम संसारम प्रवेशेदि, अरे जो संसार में प्रवेश कराए, संसार में भटकाए, चतुर्गति में ले जाए, वो सुशील नहीं होता है। सुशील तो वो है जो चतुर्गति से छुड़ावे, और छुड़ाने वाला होता है शुद्धोपयोग, शुभ अशुभ भाव संसार से छुड़ाते नहीं है, इतना होता है कि नीची गति नहीं होती है तो ऊपर की सदगति होती, पर होती गति है, और चारों गतियां संसार हैं, मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं। इस कारण से कुंद कुंदाचार्य ने वो शिष्य के प्रश्न का जवाब दिया, और देखिए गाथा में भी यही अर्थ लिखा है कि अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो, किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है या वह अच्छा कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है। यानी कुंद कुंद आचार्य ने यह तर्क दिया कि कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों को वास्तव में कुशील जानना चाहिए। सुशील तो अपने स्वभाव का नाम है, विकारी भावों का नाम सुशील नहीं है, और अगर विकारी भाव ही सुशील कहलाने लगे तो फिर कुशील किसे कहेंगे? इसलिए आचार्य ने एक उन्हें कुशील शब्द कहकर ये कहा कि दोनों कर्म की जाति के हैं, दोनों विकार की जाति के हैं, इसलिए दोनों को सुशील मत मानो, और इनका काम, दोनों का काम संसार में परिभ्रमण कराने का है, अतः भी सुशील नहीं हो सकते हैं। ये बात अमूल गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने कही। यहाँ ये विचारने की बात है कि कौन से शुभ कर्म को इन्होंने कुशील में ही शामिल किया है, तो आचार्य तो ये कहते कौन से की भेद ही नहीं है, चाहे जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो परिणाम भी वास्तव में संसार में प्रवेश कराने वाला है, वो परिणाम से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो बंद करने वाला है जो, और उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले परिणाम को या बंधन के निमित्त बनने वाले परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। और भाव कर्म आत्मा के लिए हितकारी कैसे हो सकता है? भाव कर्म के लिए तो आश्रव तत्व के निरूपण में दौलत राम जी ने छेडाला में लिखा कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, आश्रव तो घनेरे बहुत अधिक दुखदायी हैं, इसलिए बुद्धिमान उनको छोड़ देते हैं, उन्हें उनसे दूर रहते हैं, उसको भला कभी नहीं मान सकते। ये अलग है कि कमजोरी बस उन्हें अपनाना पड़ता है, तो फिर वे उसमें ये विवेक का प्रयोग करते हैं कि अशुभ से पहले बचते हैं और शुभ का आलम्बन लेते हैं, लेकिन शुभ को भी हे मानते हैं और हे मानकर अशुद्ध के पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, और जहां शुद्ध उपयोग में जाते हैं वहां उनका शुभ छूट जाता है। इसलिए दृष्टि की निर्मलता में तो वे दोनों को सदाकाल हे मानते हैं, वो क्रम से अपने आचरण को बढ़ाते हैं, और उसमें पहले उनका अशुभ छूटता है, फिर शुभ छूटता है, और शुभ अशुभ छूट जाने पर शुद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इसलिए परिणमन में किंचित अंतर देखा जा सकता है, लेकिन श्रद्धान में तो युगपत दोनों को बुरा ही मानना चाहिए, दोनों को उपादेय नहीं मानना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही है। अब इसमें अमृत चंद्राचार्य की टीका, तो इस गाथा में अमृत चंद्राचार्य मर्म खोलते हैं, क्या मर्म उन्होंने खोला, उसकी हिंदी टीका पढ़ रहे हैं। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से और किसी में अशुभ जीव परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद है। माने कर्म के कारणों में भेद कैसे गिन लिया कि एक कर्म का कारण कोई अन्य है, दूसरी जाति का परिणाम है, और एक कर्म का कारण दूसरी जाति का परिणाम है। उदाहरण के लिए अशुभ कर्म का बंध या पाप का बंध जो होता है वो तो हिंसादि पापों में परिवर्तने से होता है, और पुण्य का बंध होता है वो हिंसादि के त्याग से, पुण्य बंध के कारणों में परिवर्तने से पुण्य का बंध होता है। तो उस अज्ञानी जीव ने ये मान लिया कि इनमें कारण भेद है, अशुभ का कारण तो बाह्य है, अन्य है, अप्रशस्त है, और शुभ का कारण प्रशस्त है। इतना भेद मान करके शुभ को वो भला मानता है और अशुभ को बुरा मानता है, ये मान्यता ही झूठी है। शुभ को भला मानना और अशुभ को बुरा मानना ये मान्यता झूठी है। इसलिए कितने ऊंचा भाव क्यों ना हो, जिन कर्मों से जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसे भाव आश्रव भाव हैं और वे वास्तव में बंध के कारण हैं, वे संसार में ही रखने वाले हैं, संसार से छुड़ाने वाले नहीं हैं। ऐसा जान करके जो कारण भेद मानता है वो उसकी भूल है। हालांकि उस भूल को निराकरण आगे करेंगे, अभी भूल का ज्ञान करा रहे कि ये अज्ञानी जीव चार प्रकार से शुभ और अशुभ में भेद करता है। पहला भेद तो कारण का भेद करता है, शुभ का कारण अलग होते हैं और अशुभ के कारण अलग होते हैं। तो देखिए, कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय है और कोई कर्म अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से उन कर्म के स्वभाव में भी भेद होता है। अब देखिए, कारण भेद माना उसने और दूसरा भेद उसने स्वभाव भेद माना, क्योंकि जो पुद्गल कर्म शुभ रूप हैं वो शुभ परिणाममय होते हैं, जो अशुभ रूप हैं वे अशुभ परिणाममय होते हैं। और परिणाम को कहा है कि इनके स्वभाव में अंतर है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पुण्य अलग चीज है और पाप अलग चीज है। जबकि आचार्य सिद्ध करेंगे, ज्ञानी सिद्ध करेंगे कि ये दोनों एक जाति के हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और तुमने कारण भेद देखा है, स्वभाव भेद देखा है, इस सब का भी अभी निराकरण करेंगे। लेकिन अभी दो भेद और बताते हैं, किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी कर्म का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में भी भेद होता है। यानी जो पाप कर्म का अनुभव होता है वो तीव्र आकुलतामय होता है और जो पुण्य कर्म का अनुभव होता है वो मंद आकुलतामय होता है। तो इसकी दृष्टि मंद और तीव्र पे जाती है, इसकी दृष्टि आकुलता पे नहीं जाती। अगर दृष्टि आकुलता को विषय बनाए तो दोनों में आकुलता है, निराकुलता किसी भी भाव में नहीं है, ना पुण्य भाव में ना पाप भाव में। इतना है कि पाप भाव में तीव्र आकुलता है, पुण्य भाव में मंद आकुलता है, पर है आकुलता। अब मंद आकुलता को कोई अगर निराकुलता मानता है तो उसका यह भ्रम है। आकुलता तो आकुलता है, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो। मुझे एक दृष्टांत याद आता है इस विषय में कि जैसे एक नाव में दो छेद हो जाएं, एक बड़ा छेद हो एक छोटा छेद हो, तो उसमें उनको दोनों को हितकारी मानेगा कि दोनों को अहितकारी मानेगा? वास्तव में देखा जाए तो वो दोनों को अहितकारी मानेगा, लेकिन इतना विवेक अवश्य करेगा कि उन छेदों को बंद करने में ये विवेक लगाएगा कि पहले छोटा बंद करें कि पहले बड़ा बंद करें। तो ऐसा समझदार होगा वो पहले बड़े छेद को बंद करेगा, क्योंकि अगर छोटे छेद को बंद करने में लगे तो तब तक बड़े छेद से इतना पानी आएगा कि वो तुम्हारी नाव को डुबो देगा, और ऐसी गलती नहीं होना। इसलिए समझदारी उसकी ये होगी कि थोड़ा बहुत पानी आ जाए वो छोटे छेद से तो आए, उसको भी हम निकाल देंगे और उसको बंद करेंगे, लेकिन पहले बंद करना है बड़े छेद को। ये बड़ा छेद क्या है? वास्तव में कर्म आने का, तीव्र कर्म आने का जो आश्रव का विशेष कारण है वो पाप भाव है, वो अशुभ भाव है। वो पाप भाव से कर्म तीव्र आते हैं, पुण्य भाव में कर्म मंद रूप और शुभ रूप आते हैं। लेकिन दोनों आश्रव भाव होने से संसार में परिभ्रमण कराने के कारण, बंद कराने के कारण, दुख के कारण है, उपादेय नहीं है। मतलब श्रद्धा में एक साथ दोनों को हे जानते हुए भी आचरण में क्रम पड़ेगा, और क्रम ये पड़ेगा कि पहले पाप भाव को छोड़ने का उद्यम होगा, फिर पुण्य भाव को छोड़ने के लिए शुद्ध भाव में जाने का उद्यम होगा। ये एक आगम में पाप के छोड़ने का उपदेश तो है, लेकिन पुण्य के विषय में ऐसा लिखा कि तुम तो शुद्ध में लगो, ये पुण्य छूटे बिना रहेगा नहीं, अपने आप चला जाएगा। ये बात टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी। वहां किसी ने प्रश्न किया कि आपने पुण्य पाप को अलग से गिना के नौ पदार्थ क्यों कहे? क्या कारण था अलग से नौ गिनाने का? पुण्य पाप तो आश्रव और बंध में शामिल हो गए थे, फिर आपने अलग से क्यों गिनाए? तो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, इसलिए अलग गिनाए कि पुण्य को बुरा तो जानना और उससे डरना और डर करके उसको छोड़ना, समझ में आए कि नहीं, और पाप में धर्म नहीं मानना। पुण्य धर्म जैसे पुण्य में नहीं, पुण्य में धर्म नहीं मानना, जैसे तुमने पाप में धर्म नहीं माना और बुरा मान के छोड़ने का उद्यम किया। लेकिन पुण्य के विषय में यह है कि इसमें धर्म नहीं मानना, और छोड़ना तो ये तब है कि जहां तुम शुद्धात्मा को पकड़ने जाओगे, जहां शुद्धोपयोग प्रकट होगा, शुद्धात्मा में रमण करोगे, वहां पुण्य अपने आप छूट जाएगा। और अगर तुमने शुद्धोपयोग का प्रयास नहीं किया और पुण्य को छोड़ा तो तुम पाप में वापस चले जाओगे। इसलिए उसके क्रम हैं, त्याग होने में क्रम है, वो चारित्र की बात है, यहाँ तो श्रद्धा की निर्मलता की बात है। जिनकी श्रद्धा निर्मल नहीं होती उनका आचरण भी प्रयोजन भूत नहीं होता। इसलिए श्रद्धा में पुण्य को और पाप को दोनों को सदाकाल हे मानना है, बुरा जानना है, बंध का कारण मानना है और उसको त्याग करना है, उपादेय नहीं मानना है। इस तरह से यहाँ पर तीन बातें आ गईं, कारण भेद आ गया, स्वभाव भेद आ गया और अनुभव भेद हो गया। अनुभव में भी एक का फल जरा अलग होता है, दूसरे का शुभ का फल अलग होता है। और सारी दुनिया आज भी वर्तमान में ऐसा मानती है, अनुकूलताओं को सुख रूप मानती है और प्रतिकूलताओं को दुख रूप मानती है। ये सब जगत का अज्ञानियों का ऐसा ही प्रवर्तन है। इसलिए यहाँ विचार करते हैं कि ये जो स्वभाव भेद कहा है वो भी अभी खुलासा करेंगे, कारण भेद कहा उसका भी खुलासा करेंगे और कर्म के अनुभव में जो तुम्हें स्वाद भेद आया है उसका भी खुलासा करेंगे। एक चौथा कारण और बताया, कोई कर्म शुभ माने अच्छे मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म बुरे बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भी भेद है। ऐसे चार अंतर बताए, कारण भेद, स्वभाव भेद, स्वाद भेद और आश्रय भेद। इन चार के कारण अज्ञानी तर्क देता है कि मुझे तो पुण्य पाप में अंतर नजर आता है, लेकिन आचार्य उसका जवाब देंगे। अभी जरा देखिए वो लिखते हैं, यद्यपि कर्म एक ही है तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ रूप है कोई अशुभ है, परंतु वह पक्ष प्रतिपक्ष सहित है, वह पक्ष विरोधी पक्ष के साथ में मौजूद है, वह प्रतिपक्ष व्यवहार पक्ष का निषेध करने वाला एक निश्चय पक्ष है जिससे व्यवहार का निषेध किया जाता है। अब वो पक्ष को खुलासा करते हैं, शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक हैं। गजब बात है, दोनों में एक भी ज्ञानमय परिणाम नहीं है। पुण्य भाव भी अज्ञानमय परिणाम है, पाप भाव भी अज्ञानमय परिणाम है। और अगर मैं स्पष्ट कहूं तो जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वे 16 कारण भावना वाले जो परिणाम हैं वे परिणाम भी अज्ञानमय हैं। क्यों है अज्ञानमय? क्योंकि वे रागमय, जो परिणाम रागमय होते हैं उन परिणामों में स्व और पर को जानने की सामर्थ्य नहीं होती। ज्ञानमय परिणाम वो है जो स्व को स्वरूप जानता है, पर को पर रूप जानता है, ऐसे परिणाम को ज्ञानमय परिणाम कहते हैं। इसलिए वे दोनों परिणाम जो हैं शुभ और अशुभ परिणाम अज्ञानमय होने से एक ही हुए और उनके एक होने से कर्म के कारण में जो भेद है वो भेद भी नहीं होता है। तुम कर्म के कारण में भेद मानते थे पर दोनों तो अज्ञानमय हैं, इसलिए भेद मानना सही नहीं, और इसलिए कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक है, इसलिए उसके होने में कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों कर्मों की जो जाति है वो पुद्गल की जाति है, एक भी कर्म चैतन्य की जाति का नहीं है, और दोनों कर्म अज्ञान की जाति के हैं, एक भी कर्म ज्ञान की जाति का नहीं है। इसलिए कर्म एक ही है, शुभ अशुभ। अब आगे तीसरा बिंदु लेते हैं, शुभ अशुभ फल रूप होने वाला जो विपाक है केवल पुद्गलमय होने से, उसके होने से उस अनुभव में ये स्वाद में तुम्हें भेद नजर आता है, वास्तव में वो दोनों के स्वाद, चाहे पुण्य का स्वाद हो चाहे पाप का स्वाद हो, दोनों का स्वाद पुद्गलमय है, किसी का भी स्वाद चेतनमय ज्ञानमय नहीं। इसलिए दोनों कर्म एक ही है। और अंतिम बिंदु लिया है, शुभ कर्म अच्छे यानी मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है और अशुभ बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक भिन्न भिन्न हैं, अनेक प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न हैं, उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध मार्ग के आश्रय आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भी भेद नहीं, यानी कारण में भी भेद नहीं है, कारण के बाद स्वभाव में भी भेद नहीं है, स्वभाव के बाद स्वाद में भी भेद नहीं, दोनों पुद्गल के स्वाद हैं, और इसके बाद आश्रय में भी भेद नहीं है, दोनों पुद्गल के आश्रय से जन्मते हैं। पुण्य भाव कोई आत्मा के आश्रय से नहीं जन्मता, कर्म के उदय से ही पुण्य भाव जन्मता है। और आलम्बन भी पुण्य भाव के काल में पर का होता है, स्व का नहीं होता है, इसलिए पुण्य पाप दोनों किसी भी तरह से अलग अलग नहीं है, दोनों में एकत्व है। यह एकत्व की सिद्धि आचार्यों ने की है। अज्ञानी जीव तब तक रहता है जब तक पुण्य पाप में भेद मानता है और पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा मानता है, तब तक उस जीव का ये अज्ञान है। लेकिन एक बात सावधानी की ये जरूर है कि वो भले पुण्य पाप में अंतर न माने और श्रद्धान में पुण्य पाप को एक जाने, लेकिन आचरण में उसको ये ध्यान रखना होगा कि आचरण में अगर अशुभ में आचरण करेगा तब तो धर्म का उपचार भी संभव नहीं हो सकेगा और धर्म की प्राप्ति तो दुर्लभ होगी। लेकिन पुण्य भाव में धर्म न मानकर आलम्बन लेता है केवल इसलिए कि अभी निरावलंबन स्वभाव में नहीं जा पा रहा है, तो आलम्बन उसका लेवे, मगर आलम्बन लेने में भी उसको बुरा जाने, भला न जाने, सच्चा कारण न माने, परंतु इसे छोड़कर मैं शुद्ध में जाऊंगा, क्योंकि शुभ से जीव शुद्ध में जाता है, अशुभ से कोई जीव शुद्ध में नहीं जाता, इतना निकटवर्ती जान करके उस पर कारण पने का उपचार कथन व्यवहार से होता है। निश्चय से तो वो कारण है ही नहीं, क्योंकि जिससे बंद हो वो निर्जरा का कारण नहीं हो सकता, जो जो अज्ञानमय हो वो धर्म रूप नहीं हो सकता। इस तरह से जो पुण्य पाप हैं ये वास्तव में दोनों दोनों पुण्य पाप एक जाति के हैं, इनके कारण एक हैं, इनका स्वभाव एक है, इनके स्वाद भेद नहीं है, स्वाद भी पुद्गलमय है और इनका आश्रय भी पुद्गल ही है। इस तरह से दोनों भावों को पुण्य पाप भावों को पराश्रित जानकर स्वाश्रित न जानकर उन्हें उपादेय नहीं मानना चाहिए, उनमें हे बुद्धि आनी चाहिए और अपना ज्ञान स्वभाव सदाकाल उपादेय है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही उपादेय मानना चाहिए। इस तरह से ये जो तत्व के पुण्य पाप अधिकार में अभी अपन ने शुरुआत करके दो दो गाथाएं तो मंगलाचरण की पढ़ी, दो दो श्लोक मंगलाचरण के पढ़े अमृतचंद्राचार्य के, और एक श्लोक अपन ने कुंद एक गाथा अपन ने कुंद कुंदाचार्य की पढ़ी। इन श्लोकों में और इस गाथा में एक मतेन एक ही बात सिद्ध की गई है कि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, पुण्य पाप को पुण्य को कोई सुशील जाने और पाप को कोई कुशील जाने तो इसकी मान्यता में भ्रम है, वह भ्रम शीघ्र निकालना चाहिए और अपने श्रद्धान को निर्मल करना चाहिए। जब तक श्रद्धान निर्मल नहीं होता तब तक उसका पुण्य भाव भी कलंकित रहता है। पुण्य भाव ज्ञानी के भी हुआ करता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के पुण्य का आचरण देखा जाता है, पुण्य भाव देखा जाता है, बुद्धिपूर्वक देखा जाता है, लेकिन वह जानता है कि ये तो पराधीनता का कार्य है, मुझे स्वाधीन वृत्ति अभी प्रगति नहीं है, इसलिए मैं ये पराधीनता में जिसमें बहुत अधिक नुकसान है ऐसे पाप भाव से हटता है और जिनके निमित्त से अपना भला होता है उनमें प्रवर्तन करता है, जैसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उस मार्ग को दिखाने वाले, उस मार्ग का निरूपण करने वाले, उसका भेद कराने वाले गुरु, उनका आश्रय लेता है, उनकी संगति करता है, उनकी संगति में निकट जाता है, वे जो समझाते उसको उपयोग लगा के समझता है और उसको ही बारंबार विचार करता है, और ऐसा विचार करने से उसको तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है, उसे आत्मानुभूति होती है और उस आत्मानुभूति के बल पर वह आत्मा परमात्मा बनने के मार्ग में आगे बढ़ता है और उसका मार्ग प्रशस्त होता है। ये पुण्य पाप पूरा अधिकार भूल को मिटाने के लिए है और दोनों में भेद मिटाकर एकत्व, दोनों को एक आश्रव भाव मानने के लिए है। इस तरह से आज हम इसको यहीं ले रहे हैं, यहीं पर विराम दे रहे हैं, अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है, यदि आपको कोई इसमें प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं, हम उसका खुलासा करेंगे।
पंडित जी अपना कार्यक्रम 1 घंटे का था, अभी थोड़ा टाइम है और भी,
हमें 45 मिनट का बताया गया जब हमने चालू किया।
अच्छा।
अब हम आप अगर 1 घंटे का है तो हम अभी आगे कंटिन्यू कर देते।
हाँ हाँ स्विच आज
आप कहें तो कंटिन्यू कर दें,
मैं पूछ लूँ भानुबेन वगैरह को। भानुबेन
चालू रखते हैं तो इसको हम विषय को आगे बढ़ाते, ये जहाँ तक अपन आए हैं वो गाथा की जो टीका है उस टीका को अपन ने पढ़ा है। देखो अब इसमें आगे जो है एक 102 नंबर का कलश आ रहा है, उस कलश में भी वही बात आ रही है जो टीका में कही गई है। अमृत चंद्राचार्य की ये शैली है कि वे पहले जो टीका बनाते हैं तो वो गाथा के हृदय को खोल करके गद्य में रखते, और कवि हृदय होने के कारण गद्य को जब तक पद्य रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं तब तक आनंदानुभूति नहीं हुआ करती। इसलिए जो भाव टीका में आया है उसी भाव को पद्य रूप में इन्होंने रखा है, और उसकी वो चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। 102 नंबर का छंद पढ़ते हैं जो उपजाति छंद है। हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम तदाप्य भेदान कर्म भेद तदबंध मार्गाश्रितमेकमिष्टम स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु। अर्थ इसका ऐसा है कि हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयाणाम, हेतु माने कारण, स्वभाव माने उसका पुण्य का भाव अपना अलग, पाप का भाव अलग, ये उनका स्वभाव, और अनुभव माने स्वाद। अनुभव में एक का तीव्र आकुलतामय स्वाद है, एक का कटुक स्वाद है, एक का मधुर स्वाद है, और हेतु स्वभाव अनुभव, और चौथा का लिया है आश्रय। ये चारों सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं। हेतु भी एक है, कौन है हेतु इनका, पुण्य पाप का हेतु? तो कहे पुण्य पाप का जो वास्तव में देखा जाए हेतु तो पुद्गल है, पर है। स्वाश्रित कभी पुण्य पाप नहीं होते, पराश्रित ही पुण्य पाप होते हैं। इसलिए इनका हेतु भी पर है, कर्म का उदय है, और स्वभाव जो है दोनों का स्वभाव पुद्गलमय है। एक भी कर्म का स्वभाव चेतनमय नहीं है, ज्ञानमय नहीं है, आत्मरूप नहीं है, इसलिए वो उनका स्वभाव भी पर है। और अनुभूति जो होती है चाहे वो अनुभव में कटुक स्वाद आवे चाहे वो अनुभव में मधुर स्वाद आवे, दोनों स्वाद पुद्गल के होते हैं। कटुकपना भी पुद्गल का ही स्वाद है और मधुरपना भी पुद्गल का ही स्वाद है। इसलिए अनुभव में भी दोनों का, दोनों में जो स्वाद आया है वो स्वाद भी पुद्गल का है। और आश्रय की अपेक्षा देखें तो आश्रय में भी पुद्गल का ही आश्रय होता है, पर का ही आश्रय होता है, तभी पुण्य पाप का जन्म होता है। उनमें जो प्रशस्त पर हैं उनके आश्रय से पुण्य बंध होता है। प्रशस्त पर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ वीतरागी संत, इन तीन को सच्चे आश्रय कहा गया है, और इनकी परंपरा में जितने भी होते हैं उनके आश्रय से भी पुण्य बंध का कार्य होता है। लेकिन वह पुण्य बंध जिनके भी होता है उनको सच्चा होता है जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है, और स्वभाव में जो चूक जाते ठहर नहीं पाते हैं उनके स्वभाववान जीवों पर दृष्टि जाती है और उनमें धर्मानुराग होता है, उस धर्मानुराग से उन्हें पुण्य बंध होता है, और वह पुण्य बंध वास्तव में उनके लिए निरंतर दृष्टि की निर्मलता होने से वो पुण्य बंध संसार में भटकाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि निर्मल है, और दृष्टि निर्मल होने से वे पुण्य भाव से हटकर शीघ्र ही अपने ज्ञान भाव में प्रवेश करते। हमने एक शुभाशुभ भाव के विषय में एक दृष्टांत सुना है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। ऐसा दृष्टांत है कि जो सर्कस करने वाले होते हैं उनमें जो खेल दिखाने वाले होते हैं, तार पे चलने वाले जो कलाकार होते हैं, उनका काम तो यही है कि तार पे चल के दिखाएं और सधे रहें, गिरे नहीं। लेकिन उस सर्कस का जो मालिक है वो समझदार है, वो ये जानता है कि हालां सभी अपने तार पर या अपनी कला को दिखाएंगे लेकिन कदाचित चूक गया तो गिरे कहां। वो उसके लिए वो एक उपाय करते हैं कि नीचे जाली लगा के रखते हैं, पर जाली इसलिए लगाते हैं कि कदाचित कोई चूके गिरे तो जाली पे गिरे। उसको समझाएंगे भी, एक तो गिरना नहीं है, सदे रहना, सद करके तुम्हें अपनी कला दिखाना है, लेकिन अगर चूक जाओ तो कहां गिरना ये ध्यान रखना, जहां ये जाली है उस पर गिरना। अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, जाली पे नहीं कूदे गिरे, और तुम अगर जमीन पे गिरोगे तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, फिर खेल ही करने के चांस नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि जैसे वो जमीन पे गिरे तो पाप में गिरने वाले को तो समझो फिर अनंत संसार में चले जाना पड़ेगा, आगे सुधरने का और सम्यक्त पाने का चांस भी नहीं। और शुभ भाव की जाली पे गिरने वाले को भी ये बात कही है कि ध्यान रखना, वो जाली पे गिरकर आराम नहीं करना है, तत्काल उस जाली को छोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने का उद्यम करना। और फिर से जो तुम्हारा काम है झूला झूलने का, या तुम्हारा जो काम है तार पर चलने का, सधने का, वो काम करना। यानी शुभ भाव में आना, पाप भाव को छोड़ के शुभ में आना, शुभ में गिरना, और वहां से भी उसमें मगन नहीं हो जाना, शुभ में, शुभ से हटकर शुद्ध भाव में जाना। और शुद्ध भाव में जब जाओगे तो तुम्हारा कार्य प्रयोजन भूत कार्य सिद्ध होगा, वहां जाली अपने आप छूट जाएगी। तो जैसे जाली की स्थिति है, ऐसे मोक्ष मार्ग में शुभ भाव की स्थिति है। जैसे जमीन की स्थिति खतरनाक है, ऐसी पाप भाव की स्थिति खतरनाक है। और मूल प्रयोजन भूत कार्य तो अपने आप में सधना है, स्वभाव का आश्रय लेकर सध करके दिखाना है, ये मूल कार्य कहलाएगा। इसलिए इस मूल कार्य को करना ही इस आत्मार्थी का काम है। हमने एक भजन सुना है, पंडित दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है, बहुत सुंदर भजन लिखा है। भजन में उन्होंने ये कहा है कि परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, तीन प्रकार की परिणति होती है, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। यानी एक पुण्य रूप होती है परिणति, एक पाप रूप परिणति, एक पुण्य पाप से हट करके राग को दूर करने वाली यानी वीतराग परिणति होती है। तो तीन परिणति हो गई, पुण्य परिणति, पाप परिणति और वीतराग परिणति। तो परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, सभी जीवों की परिणति तीन भांति की, तीन प्रकार की कही गई, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे शुभ अशुभ अंध, उन तीन में शुभ बंध और अशुभ बंध, ये तो अंध माने कहना चाहिए अज्ञानमय। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंध, वे दोनों परिणति कर्म का बंधन कराने वाली हैं। वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। यावत शुद्धोपयोग, बहुत ही बढ़िया लिखा है, इसमें पूरा मोक्ष मार्ग दर्शा दिया है, आश्रय की अपेक्षा भी दर्शा दिया है, श्रद्धान की निर्मलता अपेक्षा भी दर्शा दिया है, क्योंकि दौलत राम जी जैसे विद्वान ने इस भजन को लिखा है। तो यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, जब तक ये जीव अपना इतना पुरुषार्थ न कर ले, इतना पुरुषार्थ वृद्धिंगत न कर ले कि वो शुद्धोपयोग में टिक सके, तो यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, जब तक वास्तव में सुखदायी शुद्धोपयोग को जब तक नहीं पाता है, तावत ही करण योग कही पुण्य करनी, तब तक पुण्य करनी का आलंबन ले सकते हो। तत्व का अभ्यास भी पुण्य करनी है, जिनवाणी का श्रवण भी पुण्य की करनी है, जिनेन्द्र का दर्शन भी पुण्य की करनी है, जिनेन्द्र की भक्ति, जिनेन्द्र की पूजा, जिनेन्द्र का विधान, उनके निकटवर्ती होना, उनका स्वरूप का चिंतन करना, उनके स्वरूप को बारंबार विचारना, नमोकार मंत्र का पाठ करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये पुण्य करनी कहलाती है, पुण्य को करने वाली होती है। तो यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण योग कही पुण्य करनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। अब अंतिम जो इसमें माने कहना चाहिए चौबाई आ रही है, वो बहुत ही सुंदर है, मार्मिक है। वे क्या लिखते हैं कि ऊंच ऊंच दशाधार, हे भाई जरा ये प्रयोजन समझ लो जरा, कि हम जो भी उपदेश दे रहे हैं तुम्हें ऊपर चढ़ने का दे रहे हैं, इसलिए तुम अशुभ से हट करके शुभ में भी आओ तो भी शुभ में मगन नहीं हो, हैं, और शुद्ध को भूलो नहीं। इसलिए ऊंच ऊंच दशाधार, चित्त प्रमाद को बिडार, अपने चित्त से प्रमाद को हटा दो, और ऊंचली दशा से नित गिरो अधो धरनी, ऊपर से नीचे नहीं गिरना, पुण्य छोड़ के पाप में नहीं जाना, लेकिन पाप छोड़ के पुण्य में आना और पुण्य को छोड़ के शुद्ध में जाना, ये शैली है जाने की क्रिया की, लेकिन क्रिया वाली शैली आचरण में होती है, श्रद्धान में एक कर्म नहीं होता है। श्रद्धान में तो एक साथ युगपत पुण्य पाप दोनों बिल्कुल सर्वथा ये हैं, और एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी शैली जब तक दृष्टि में नहीं आती है और हे गे उपादेय का ज्ञान जब तक नहीं होता है, तब तक उसका वो आचरण सार्थक पने को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को बिडार, ऊंचली दशाते मत गिरो अधो धरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। ऐसी ये तीन प्रकार की परिणति जिसमें पुण्य पाप को भी बताया है, उनमें क्या विवेक लगाना है, क्या तो श्रद्धान रखना है और क्या आचरण में विवेक लगाना है, इस बात को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तुम्हारे से पाप का सेवन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पाप से हटकर तत्वाभ्यास कर रहा है, दोनों की यद्यपि क्रिया बहिर्मुखी है, दोनों की क्रिया पराश्रित है, ये सब होते हुए भी तत्व ज्ञान की जो क्रिया है वह उसके लिए आगामी काल में शुद्धात्मा में जाने का चांस प्रदान करती है। हालांकि वो चांस वो क्या, उसके काल में अगर पुरुषार्थ करेगा तो शुद्धात्मा में जाएगा, और उसके काल में अगर प्रमाद में परिवर्तन करेगा तो नीचे अशुभ में चला जाएगा। इसलिए शुभ भाव और अशुभ भाव की ये स्थिति है, और इसी बात को खुलासा करने को पंडित प्रवर टोडरमल जी ने सातवें अधिकार में जब व्यवहारावासी का प्रकरण लिखा तो शुरुआत में सावधान किया। उन्होंने ये सावधान किया कि ध्यान रहे, अशुभ से हटके शुभ में परिवर्तन करने के लिए हम शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसमें धर्म मानने का निषेध करने के लिए यहाँ शुभ का भी निषेध रूप निरूपण हम करेंगे। लेकिन उसको निषेध रूप निरूपण सुनकर जो अपना श्रद्धान सुधारेंगे उनके तो श्रद्धान के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और जो अपना आचरण बिगाड़ेंगे वे दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए निरूपण का प्रयोजन ये है कि श्रद्धान को सुधारना है, आचरण को बिगाड़ना नहीं है। ये व्यवहाराभासी ये गलती करता है कि या तो वो आचरण करता ही नहीं है, और करता है तो उसी को धर्म मान लेता है, और निश्चयावासी ये गलती करता है कि वो आचरण को सर्वथा निरर्थक जानता है। अरे अब आचरण करना चाहे पुण्य में प्रवर्तो चाहे पाप में प्रवर्तो, ऐसा नहीं है। पाप में प्रवर्तने वाले के धर्म कभी नहीं होता है, और पुण्य में धर्म मानने वाले के भी धर्म नहीं होता है, लेकिन पुण्य में धर्म न मानकर प्रवर्तने वाला पुण्य को छोड़कर धर्म में चला जाता है। ऐसा राजमार्ग है, ऐसा ये जिन मार्ग है। इसलिए इस जिन मार्ग में अगर हम प्रवर्तेंगे और पुण्य पाप के विषय में अपने श्रद्धान को निर्मल करेंगे, और आत्मा को पुण्य पाप से रहित जानकर, पुण्य पाप रहित आत्मा को जानकर उसके ज्ञान स्वभाव को अपना मानेंगे, और ज्ञान से पुद्गल के तुम्हारे पुण्य पाप के स्वभाव को भी जानेंगे, लेकिन जानने पर उसे पर जानेंगे, उसे स्वरूप नहीं जानेंगे, और ज्ञान को अपना स्वरूप जानेंगे। जब जब ज्ञान में राग झलके तो ज्ञान को राग रूप नहीं मानना है, पर राग को राग रूप जानना है, और ज्ञान में झलके तो भी ज्ञान में राग नहीं है ऐसा मानना है। राग तो है, राग की सत्ता है, लेकिन उसकी सत्ता उसमें है, ज्ञान में नहीं। अगर ज्ञान में राग की सत्ता मान लोगे तो फिर संवर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जो उपयोग है वो उपयोग उपयोग में वर्तता है, और जो क्रोधादि रागादि हैं वे रागादि में वर्तते हैं। तो बाहर जाना भी पर्याय में राग की उत्पत्ति हुई है, उसे वहीं रहने वाला ज्ञान उसको जानता है, उसे अपनी परिणति में झलकाता है। यूं कहना चाहिए कि ज्ञान की परिणति गे आकार बनती है, पर गे आकार बनने पर भी उस गे आकार में राग का प्रवेश नहीं होता है, उस गे आकार में ज्ञान ही विद्यमान रहता है। और जो उस गे आकार में राग को देखते हैं उन्हें भेद ज्ञान कभी नहीं होता है, वे विशेष को पार कर सामान्य में नहीं आते हैं, और जो उस गे आकार में गे को न देखकर ज्ञान मात्र सामान्य को देखते हैं उनकी परिणति विशेष से हट करके सामान्य के आविर्भाव में आ जाती है, और विशेष का त्रिभाव करके आत्मानुभूति प्रकट करके आत्म कल्याण के मार्ग को अपनाती है। तो इस तरह से हमें पुण्य पाप के स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा रहना है, उसे वो होता है ये बात सच है, वो जीव की पर्याय में पैदा होता है ये बात सच है, पर वो जीव नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान से भिन्न है, और ज्ञान से भिन्न होने से वो उपादेय नहीं है, वो हेय है। ऐसा श्रद्धा निर्मल वर्तना चाहिए। राग को राग जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, राग को अपने में मिला लेने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। राग ज्ञान जानते ही नहीं है पर को या पुण्य पाप को, ये मानना भी अज्ञानता है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। गे कोई भी हो वो ज्ञान में झलक सकता है। अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सर्व गे झलकते हैं, तो भी केवल ज्ञानी का कुछ उस झलकने से कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। बिगाड़ सुधार तो इसमें है कि जो झलके उसके एकत्व बुद्धि करे तो बिगाड़ होता है, और ज्ञान में झलक रहे हैं तो ज्ञान के झलकने से कुछ ज्ञान का बिगड़ता नहीं है, बल्कि ज्ञान की निर्मलता प्रकट होती है। लेकिन ज्ञान का जो उपयोग है वो उपयोग की तन्मयता स्वभाव में होना चाहिए, गेयों में नहीं होना चाहिए। गेयों में तन्मय होगा तो स्वभाव से हट जाएगा, और स्वभाव में तन्मय होगा तो गे ज्ञान में झलकते रहेंगे, लेकिन उसे गेयों से कुछ लेना देना नहीं है। और ज्ञान में झलकने का अर्थ यह है कि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई है कि वो स्वयं ही गेयाकार परिणमता है, उसे कोई गेयाकार परिणमाने वाला नहीं है। ज्ञान पर्याय में ही ये सामर्थ्य है कि वो अपने जिस आकार रूप परिणमना चाह रही है वो आकार रूप परिणमे, और वो उसमें एक निमित्त जरूर बनता है। ज्ञान जब आकार रूप परिणमता है तो गे उसमें निमित्त अवश्य होता है। ऐसा नहीं होता कि सर्वज्ञ भगवान कभी ऐसी वस्तु को जान लें जिसकी सत्ता ना हो। जैसे गधे के सींग की सत्ता नहीं होती, तो क्या सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में गधे का सींग झलक सकता है? नहीं झलक सकता। क्यों नहीं झलक सकता? जिसकी सत्ता नहीं वो ज्ञान में झलक नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये निकला, जिसकी सत्ता है वो ज्ञान में क्यों नहीं झलके? अवश्य झलकता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितने पदार्थों की सत्ता है वे सब ज्ञान में झलकते हैं, पर कोई भी पदार्थ ज्ञान में आता नहीं और किसी पदार्थ के पास ज्ञान जाता नहीं। ज्ञान सदा ज्ञान रहता है, राग सदा राग रहता है, पुण्य सदा पुण्य रहता है, पाप सदा पाप रहता है, और ज्ञान सदा ज्ञान रहता है। ऐसे पुण्य पाप का और ज्ञान का भेद जानकर जिनकी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर टिकी है वे पुण्य पाप का नाश करते हैं और अपने स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये बात अभी हम बंद कर रहे हैं, और 5 मिनट का अभी भी टाइम बच रहा है, तो आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
पंडित जी,
हाँ जी, हाँ हेलो, देखिए,
जय जिनेन्द्र,
हेलो,
आपने जो उपयोग की बात बताई, उपयोग उपयोग में रहता है, उपयोग सुधारी में नहीं रहता है, तो यहाँ उपयोग यानी कि अपनी अपने ज्ञान की परिणति अपने में रहती है, ऐसा आएगा ना जी?
हाँ, ज्ञान की परिणति ज्ञान में ही परिणमती है। ज्ञान की परिणति राग रूप नहीं हो सकती, क्योंकि उसका स्वभाव राग में परिणमने का ज्ञान का है नहीं। लेकिन ज्ञान में राग झलक सकता है, वो झलकाने का स्वभाव उस ज्ञान में पड़ा हुआ है। स्वभाव और पर का प्रकाशन करने का स्वभाव ज्ञान में है, लेकिन पर रूप परिणमने की सामर्थ्य ज्ञान में नहीं। इसलिए पुण्य ज्ञान में झलकता है, पाप ज्ञान में झलकता है, लेकिन वो पुण्य पाप ज्ञान रूप नहीं होता, और ज्ञान पुण्य पाप रूप नहीं होता, ऐसा है।
धन्यवाद।
ठीक है, और कुछ है?
नहीं, आपने बहुत ही अच्छी तरह से खुलासा कर दिया।
पंडित जी, आपने शुभ और अशुभ कर्म शातावेदनीय के दो विभाग बताए।
साता और असाता, ये वेदनी के दो भेद,
कर्म के दो, हाँ, वो कैसे बताए?
वो ऐसा है कि जो साता प्रकृति और असाता प्रकृति है वो प्रकृति वेदनी कर्म की होती है। साता वेदनी और असाता वेदनी ये वास्तव में घातीय कर्म की प्रकृति नहीं है, ये अघातीय कर्म की प्रकृति है। पुण्य का उदय हो कि पाप का उदय हो, ये दोनों अघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं, और अघातीय कर्म की प्रकृतियां आत्म स्वभाव का घात नहीं करती हैं, लेकिन जो उनमें एकत्व बुद्धि करता है वो मिथ्यात्व प्रकृति है, और वो घातीय कर्म की प्रकृति होने से उससे आत्मा का बुरा होता है। इसलिए इन दोनों को, जो अघातीय की प्रकृति है, एक को साता कहा गया है जिनवाणी में पुण्य को, और पाप को असाता प्रकृति कहा गया है। ये दो प्रकार की प्रकृतियां, बल्कि 148 कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें 100 प्रकृतियां हैं असाता रूप हैं, वो पाप रूप हैं, और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। अरे इस तरह से उनका पुण्य पाप प्रकृतियों का भेद भी जिनागम में उल्लिखित है।
और आपने बताया कि अशुभ से शुद्ध में नहीं जा सकते हैं, शुभ में से शुद्ध में जा सकते हैं। तो जब भी मायूर भगवान का जीव सिंह की अवस्था में था और वो हरण को मार के खड़ा था, तभी तभी सीधा चला गया अपने आत्मा में, तो अशुभ में से
नहीं नहीं, नहीं ये भ्रांति है, ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे गया। जब दो मुनिराजों का उपदेश सुना, उस उपदेश को सुनते काल में जो उसे उसको सिंह को मारने के भाव थे, खाने के भाव थे, वे तो तुरंत छूट गए, बल्कि पश्चाताप के आंसू उसके गिरे और पश्चाताप में उसका वो पाप भाव तो धुल गया। अब ये तो जो मुनिराज ने उपदेश दिया कि तू तीर्थंकर का जीव है, अरे तू तो महान बनने वाला है, तू अपने आत्मा को ध्यान दे, आत्मा का अनुभव कर और इस महानता को प्राप्त कर, ऐसा जो मुनिराज का उपदेश उसे मिला, उस काल में उसके विशुद्धि लब्धि थी, इसलिए जो उपदेश को उसने ग्रहण करके देशना लब्धि भी पाई और उसका वहाँ उसके उसकी पात्रता अनुसार चिंतन चला तो प्रायोग लब्धि भी हुई और अंतर्मुखी पुरुषार्थ हुआ तो करण लब्धि की भी प्राप्ति हुई और फिर सम्यक दर्शन उसको हुआ। इसलिए शुभ से आज तक किसी जिनागम में किसी भी अनयोग में शुभ से शुद्ध होना नहीं लिखा है, लेकिन बहुत हर जिनागम में अशुभ से शुद्धोपयोग होना नहीं लिखा है, शुभ से शुद्धोपयोग लिखा है। और तो ठीक है, मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ। हेलो, मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ आपको, अमर चंद्राचारी का पंचास्ती काय की गाथा 169 या 170 है, उसमें पंडित जी ने उसमें अमर चंद्राचार्य ने ये लिखा कि इस गाथा में हम जो पुण्य है उसको परंपरा मोक्ष का कारण सिद्ध करते हैं, और उस गाथा में परंपरा मोक्ष का कारण सिद्ध किया, और अंगली गाथा में ये लिखा कि अब इस पुण्य को हम मोक्ष का साक्षात अंतराय सिद्ध करते हैं। तो परंपरा कारण व्यवहार से सिद्ध किया और मोक्ष का साक्षात अंतराय निश्चय से सिद्ध किया, ऐसी दो गाथाएं लिखी हैं। तो परंपरा कारण लिखा है वो व्यवहार का कथन है, और व्यवहार से वो परंपरा कारण है, लेकिन पाप को कहीं परंपरा कारण पूरी जिनवाणी में नहीं लिखा है।
बराबर, बराबर, अभाव रूप कारण है वो।
हाँ, अभाव रूप कारण का मतलब अभाव ही रूप होता है, व्यवहार कारण माने अभाव रूप होता है, सद्भाव रूप कोई नहीं होता, सद्भाव रूप तो शुद्धोपयोग कारण है, स्वभाव अभाव रूप कारण कहने में आता है।
हाँ, जी, आप अगले सवाल का सवाल में अगले अगले सवाल में 100 प्रकृतियां बोली आपने, पुण्य रूप और नहीं 100 प्रकृतियां पाप रूप।
रजनी भाई,
हाँ
जी, रजनी भाई, आज आपनो टाइम थवा आव्यो छे એટલે કાલે તમે ક્વેશ્ચન રાખો કાલુ પર।
હા બરાબર,
અને હા તો અને આપણે હવે જીનવાણી સ્તુતિ કરી અને એન્ડ કરીએ। હિનાબેન તમે જીનવાણી સ્તુતિ લઈ લ્યો।
હા જી, निज निधि ने बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ को देना सत पार है, वंदना सत पार है। नवा नव का मंत्र। Thank you.